हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रहने दे मनु बेटा, तुझ पर ये सब सूट नहीं करता। तू अपने आप में रहते हुए अच्छी लगती है। इस तरह किसी की फिक्र करना या उसके लिए परेशान होना सीरियसली नॉट योर कप ऑफ टी, मनस्वी की माँ ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर अनय भी मुस्कुराया, क्योंकि वो अपनी सास की बात से पूरी तरह सहमत था। वो इतने दिनों से मनस्वी के साथ रह रहा था, लेकिन उसने कभी मनस्वी को किसी के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा था। इसलिए जब उसने अपनी माँ की फिक्र करते हुए ये बात पूछी, तो उन दोनों को लगा कि वो झूठा दिखावा कर रही है। उन दोनों को साथ में हंसते मुस्कुराते देख मनस्वी को लगा कि उसकी माँ और पति उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मनस्वी चिल्लाकर बोली, क्यों क्यों आप लोगों को मेरी हर बात से प्रॉब्लम रहती है? मैं अच्छा करूं या बुरा, हमेशा बुरी मैं ही होती हूं। और आप मेरी माँ होकर भी मुझे नहीं समझती, तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? और मैं ही पागल थी जो आप लोगों की फिक्र कर रही थी। सच कह रही हूं आप, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इतना बोलते हुए मनस्वी गुस्से में पैर पटक कर सीधा अपने कमरे की ओर भाग गई। उसके नाराज होने पर अनय क्लूलेस होकर अपनी सास की ओर देखने लगा। उन्हें भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। क्या हो जाता है इसे, कैसे संभालते हो बेटा तुम इसे? आई एम सॉरी, अपनी बेटी की तरफ से वो थोड़ी सी ऐसी ही है। मनस्वी को भागते हुए देख उसकी माँ ने अनय से कहा, अरे मम्मी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? अब तक तो मुझे आदत हो गई है उसके ऐसे बर्ताव की, इसलिए मैं उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता, अनय ने कहा। ये बात सच भी थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने दोनों ने मिलकर रीना जी मनस्वी की माँ से ये बात छुपाई हुई थी। ये बात सुनकर रीना जी हैरानी से अनय की ओर देखने लगीं और उसको बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगीं। अनय ने बात संभालते हुए कहा, आई मीन उसका छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और बाकी उसकी आदतें मैं अब तक जान गया हूँ, इसलिए इन सबको लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। बाकी तो सब ठीक है, आखिर वाइफ है मेरी तो थोड़ा एडजस्ट दोनों को ही करना पड़ता है। मैं देख कर आता हूँ उसे। अनय ने अपनी तरफ से बात संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन रीना जी को शक हो गया कि इन दोनों का रिश्ता जैसा दिखता है वैसा नहीं है। और सच में इन तीन दिनों में उन्हें ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला था जैसा रिश्ता नॉर्मल पति पत्नी का होता है। अनय की बात सुनकर उसकी सास ने अपने मन में काफी कुछ सोचते हुए सहमति में अपना सिर हिलाया। अनय वहां से सीधा ऊपर सीढ़ियों की ओर चल दिया। अनय को लगा कि मनस्वी गुस्से में ऊपर अपने कमरे में गई होगी, लेकिन उसे कमरे का दरवाज़ा खुला दिखा। वो समझ गया कि मनस्वी अपने कमरे में नहीं बल्कि उसके कमरे में है। अनय उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी वे बात करते थे उनकी बात हमेशा बहस पर खत्म होती थी और फिर उनके बीच काफी दिनों तक बात नहीं होती थी, इसलिए वो उससे बात करना या बहस करना इग्नोर ही करता था। लेकिन जिस तरह से गुस्से में मनस्वी यहाँ आई थी, इसलिए अनय को लगा कि उसे एक बार देखने जाना चाहिए, क्योंकि उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। और अनय का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मनस्वी कमरे में आकर पूरे कमरे की चीज़ें इधर उधर फेंक रही थी। तभी अनय ने दरवाज़ा खोला तो अलार्म क्लॉक उसके साइड वाली दीवार पर आकर लगी और वो किस्मत से बच गया। लेकिन मनस्वी ने दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो लगातार बेड पर रखी सारी चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। उसने पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया था। उसकी नज़र साइड में रखे फ्लावर वास पर पड़ी और उसे उठाकर वो जमीन पर पटकने ही वाली थी कि अनय आगे बढ़ा और उसने मनस्वी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस करो, इतनी तोड़फोड़ करके सुकून नहीं मिला क्या तुम्हें अब? ये भी, अनय ने उसे मनाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मनस्वी ने फ्लावर वास वापस रख दिया। अनय ने उसका हाथ भी छोड़ दिया। अनय को सामने देखकर मनस्वी को लगा जैसे उसका गुस्सा गायब हो गया है, लेकिन गुस्से की जगह वो बहुत डिसअपॉइंटेड और उदास महसूस कर रही थी। उसे लगा कि ये सब शायद उसकी ही गलती है। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू भरी आंखों से अनय की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी अनय, रियली सॉरी। कल रात मैंने तुम्हें सेल्फिश बोला, लेकिन मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे ज्यादा सेल्फिश तो मैं हूँ। हमेशा बस खुद में रहती हूँ और कभी किसी और के बारे में नहीं सोचती। इतना बोलते हुए मनस्वी रोने लगी और उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। चलो अच्छा हुआ अपने आप को पहचाना तो तुमने, अनाई ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर भी मनस्वी को गुस्सा नहीं आया। रोना बंद कर वो सीरियस आवाज में बोली, क्या हुआ है मॉम को? तुम उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए थे। मुझे पता है मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रख पाती। और तुम्हें पता है जब मैं ट्राई करती हूँ तब हमेशा ऐसा ही होता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि मुझे भी कभी किसी की फिक्र हो सकती है। फिक्र और तुम्हें? सीरियसली वनस्वी, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। बाय द वे मम्मी ठीक है, उन्हें बस थोड़ी वीकनेस है। और मैं उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गया था क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आई थी। और अनई रुक गया क्योंकि वो अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता था कि उसने खुद जाकर चेक किया और फिर जिद करके उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। इसके अलावा उसे मनस्वी से ये सारी बातें बताना जरूरी भी नहीं लगता था। हाँ ठीक है, शायद मुझे नहीं आता किसी की फिक्र करना, लेकिन अपनी मॉम को लेकर मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। आखिर खून का रिश्ता है हमारा और सबसे पहला भी। बट थैंक्स, मनस्वी ने कहा। अनाई ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोला और चुपचाप बिखरा हुआ सामान अपनी जगह पर रखने लगा। उसे चुपचाप सामान समेटते हुए देख कर मनस्वी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने आगे आकर अनाई के हाथ में पकड़ा हुआ कम्बल छीनते हुए कहा, रहने दो तुम, ये सब मैंने बिगाड़ा है, मैं ठीक करवा दूंगी मेट से बोलकर। हाँ ठीक है, और उन्हें पैसे किस बात के देते हो तुम? इतना काम तो करवाना ही चाहिए, वैसे भी वो सब फालतू ही रहती हैं घर में और कोई तो काम होता नहीं। ठीक है, तुम इस तरह से उनका काम बढ़ाकर अपने पैसे वसूल कर सकती हो, अनाई ने ताना मारते हुए कहा और कम्बल मनस्वी के हाथ में छोड़कर दूसरी तरफ आकर कपड़े उठाने लगा। इस आदमी को तो हर बात में ताना मारना जरूरी होता है। अब गुस्से में ये सब हो गया तो क्या करूं? मनस्वी ने अपने आप में बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन इतनी धीमी नहीं कि अनाई को सुनाई ना दे, इसलिए अनाई ने बिना उसकी तरफ देखे इनडायरेक्टली उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, बस सच बोल रहा हूँ। और अगर अपनी गलती का जरा भी एहसास है तो उसे सुधारने की कोशिश करो और साथ ही कोशिश करो कि वो गलती मत दोहराओ। इसके अलावा और कुछ भी करके सब ठीक नहीं कर सकती। अच्छा तो क्या तुम चाहते हो ये सब कुछ मैं साफ करूं? मनस्वी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए सवाल किया। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूं, लिटरली नथिंग, जस्ट थिंक बाय योरसेल्फ, अनाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और वहां से निकलकर सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद तक मनस्वी उसकी बातों के बारे में सोचती रही। फिर कुछ देर बाद उसने खुद ही एक एक करके चीजों को उठाकर अपनी जगह पर रखना शुरू कर दिया। आदित्य और सुनैना घर वापस आ गए। आज के इंटरव्यू की सफलता के बाद वे दोनों बहुत खुश थे। पूरे इंटरनेट पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज छाई हुई थी और उसकी नई मालकिन के एटीट्यूड और हाजिर जवाबी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थीं, जिनमें से ज्यादातर पॉजिटिव ही थीं। सुनैना ने इस बारे में ज्यादा कुछ चेक नहीं किया लेकिन कई नोटिफिकेशन उसके मोबाइल में पॉपअप हो रहे थे तो उसे इस बारे में पता चल गया। क्रमशः